शांति। अच्छा लग रहा है मधुबन में सुबह से रात कैसे बीत जाती है, कैसे सारा दिन गुजर जाता है। स्वयं को एक विद्यार्थी समझकर पढ़ाई पढ़ रहे हैं, चाहे कितने भी पुराने हो गए, लेकिन बाबा कहते हैं जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। ब्रह्मा बाबा ने भी अपने आप को सदा स्टूडेंट समझा। बाबा कहते थे टीचर तो बस एक ही है, मैं स्टूडेंट हूँ। और बाबा ब्रह्मा बाबा नंबर वन स्टूडेंट था। कैसे नंबर वन स्टूडेंट था? नंबर वन स्टूडेंट कैसे था ब्रह्मा बाबा? श्रीमत पर चलता था। और क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने कभी मुरली मिस नहीं की, समझा? ब्रह्मा बाबा कभी मुरली मिस कर सकते थे? क्योंकि शिव बाबा तो उनके ही द्वारा सुनाते थे, तो पहले कौन सुनता था? ब्रह्मा बाबा। इस मुख से जो मैं बोल रही हूँ, सबसे पहले तो मैं ही सुन रही हूँ ना, ये आवाज मेरे कानों तक पहले पहुंचेगी, फिर आपके कानों तक। तो ब्रह्मा बाबा नंबर वन स्टूडेंट था। और ब्रह्मा बाबा नंबर वन विचार सागर मंथन करने में भी होशियार था। परंतु बाबा हमेशा कहते थे कि कभी नहीं समझो कि ये ब्रह्मा बाबा सुना रहे, शिव बाबा सुना रहे, सदा यही समझो। इतनी नम्रता थी। परंतु ब्रह्मा बाबा अपना मंथन भी तो सुनाते होंगे ना मुरली में, कि नहीं? बहुत कुछ आता है ब्रह्मा बाबा का भी मंथन। सवेरे सवेरे बाबा उठ करके बैठ जाते थे, दादी जान की अनुभव सुनाती थी कि एक बार दादी जान की बाबा के कमरे में गई, सुबह 3 बजे भी नहीं थे और बाबा बैठे थे पलंग पर बाबा के कमरे में। तो धीरे से गई, देखा बाबा तो जाग रहे हैं और बाबा बैठे हैं। तो धीरे से बाबा से पूछती है, बाबा आप क्या कर रहे थे? अभी तो 3 ही मुश्किल से बजे। तो बाबा ने कहा कि मैं गरम गरम हलवा पका रहा था। गरम गरम हलवा पलंग पर बैठकर? तो कौन सा गरम गरम हलवा पका रहा था? जो अपना विचार सागर मंथन ब्रह्मा बाबा कर रहे हैं, वो गरम गरम हलवा की तरह, क्योंकि बाबा को मुरली में सुनाना है। तो बाबा मंथन भी बहुत करते थे, तभी तो नंबर वन गए। भले बाबा कहते थे ये शिव बाबा का रथ है, शिव बाबा को किराया देना पड़ेगा ना, इस आत्मा को उनका मकान लिया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपना पुरुषार्थ नहीं करना है ब्रह्मा बाबा को, वो भी बहुत करना था। अपना पुरुषार्थ सुनाते भी थे बाबा, कैसे मैं पुरुषार्थ करता हूँ। साकार मूल्यों में बहुत कुछ आता है, ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ करने की विधि। अमृत वेले फिर दिन भर स्नान करता हूँ, भोजन करता हूँ, तो बाबा अपना सुनाते थे। तो हम अपना भी तो सुना सकते ना। बाबा कहते अनुभव सुनाना सबसे अच्छा भाषण है, अनुभव सुनाना सबसे सहज से सहज भाषण है। पॉइंट्स कुछ और गहरी बताओ उससे अनुभव बड़ा सहज आ जाता है। कई बार हम किसको कहते हैं ना, रात्रि क्लास कराओ, कहते क्या कराऊं क्या कराऊं, तो हम कहते अपना अनुभव सुनाओ। अरे बहुत खुश हो जाते थे, अपना अनुभव सुनाएंगे। तो अनुभव सुनाने के लिए बहुत सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अंदर में पहले से भरा हुआ है। परंतु विचार सागर मंथन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सागर मंथन करेंगे विचारों का, ज्ञान का, तो नई नई पॉइंट्स निकलेगी और नई नई बातें निकलेगी तो बहुत खुशी होती है। फिर वो नई नई बातें नई नई पॉइंट्स सबको सुनाते हैं तो उनको भी खुशी होगी, तो उनसे और सेवा होती है। तो अभी मुझे टॉपिक दी गई है मन जीते जगत जीत। मन को जीता जा सकता है, जीता जा सकता है या नहीं जा सकता? जी जीत सकते हैं, मन को मोड़ सकते हैं। तो मन जीते जगत जीत, वैसे बाबा कई बार मुरली में कहते हैं मन जीते जगत जीत नहीं, परंतु माया जीते जगत जीत। क्योंकि मन का तो काम ही सोचना है, अब सोचने को थोड़ी बंद करेंगे, सोचना तो चलेगा ही। योग में भी हम कोई अपना सोचना बंद थोड़ी करते हैं, परंतु हाँ धीरे 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 जो संकल्प मन में करते हैं उसका स्वरूप बनते जाते हैं, याद हमारी पक्की हो जाती है। पर संकल्प रहित तो नहीं बनते ना, क्योंकि कई बार कई जो योग सिखाते हैं ना तो उसमें वो बताते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की जितनी भी वृत्तियां हैं उनका निरोध करो, सप्रेस करो, दबाओ, उसको दमन करो और ब्लैंक बन जाओ, कुछ भी न सोचो, असोच, अमन अमन बन जाओ। और अमन माना मन कुछ न सोचे, और हम कहते अमन का मतलब मन शून्य बन जाए ऐसे नहीं, मन अमन हो जाए अमन का मतलब है शांति। तो शांति भी तो मन में ही अनुभव होगी, मन की शांति कहते हैं। आत्मा का तो स्वभाव ही शांति है, लेकिन मन क्योंकि चंचल है इसीलिए अशांत बन जाता है। तो मन में चंचलता खत्म होगी तो मन में शांति आएगी अपने आप। तो इसीलिए मन असोच बन जाए, सोचे ही नहीं, ये लक्ष्य नहीं है। तो मन जीते जगत जीत का मतलब क्या हुआ, क्योंकि उस हिसाब से मन जीतना माना मन को मारना। तो बाबा कहते मारो मत लेकिन सुधारो, क्योंकि मन आपका बहुत बड़ा मित्र है, शत्रु नहीं है। भाई शत्रु है तो इसको मार गिराओ, कोई आतंकवादी है तो मार गिराओ, मारो उनको, क्योंकि आतंकवादी को छोड़ देंगे या उसको चलो पकड़ेंगे भी, मारेंगे नहीं। और पूरा प्रूफ है कि आतंकवादी है, सब उसके सबूत है, और चलो जेल में भी डाल दिया तो वो जैसे था ना, एक व्यक्ति को कितने साल जेल में डाला, आखिर तो फांसी देनी पड़ी। कौन था वो? जी जी क्या था? कसाब, कसाब, वो आतंकवादी था। सारे प्रमाण थे लेकिन अभी जब तक कोर्ट का फैसला हो कुछ हो तब तक उनको खूब खिलाया पिलाया, जो और नहीं खाते होंगे वो उनको खिलाना पड़ता था। तो गवर्नमेंट का रोज का कितना खर्चा था उस एक व्यक्ति पर ही, और आखिर तो उनको फांसी तो देनी थी। तो उनको तो बचाना भी जरूरी नहीं है, पकड़ना भी नहीं, मार डाला खत्म, क्योंकि पता नहीं क्या करेगा, जिंदा रहेगा, और बाहर निकाला जेल से तो फ्री हो जाएगा तो और कुछ करना दे, इसीलिए खत्म कर दो, काम तमाम कर दो, बस पता भी न चले। लेकिन बाबा कहते मन तो ऐसा नहीं है ना, मन तो पल पल पर आपके साथ है। वो तो आपके ऊपर है कि आप उसको अपना मित्र बनाओ या अपना शत्रु बनाओ। जैसे आत्मा के लिए कहते हैं आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है, वैसे आत्मा तो सदा ही मित्र है क्योंकि उसका असली स्वरूप तो सदा ही शुद्ध है। लेकिन वास्तव में है मन की बात कि उसको अपना मित्र बनाओ चाहे शत्रु बनाओ। अगर मन को मित्र बना लिया तो वो मन ही आपको विश्व पर राज्य दिला देगा। अगर मन को अपना दुश्मन बना लिया, अपने ही विरुद्ध आपका मन लड़ने लगा, तो आप अपना ही दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए अगर मन को मित्र बनाया, उसको अच्छी सीख दी, अच्छी शिक्षाएं दी, तो मन इतना काम करेगा जो आपको बहुत ऊंचा चढ़ा देगा। बाबा कई बार बताते हैं ना, कहानी सुनाते हैं वो राजा की। क्या कहानी थी? उसके पास एक जिन्न था। जिन्न वो कहता था मुझे काम दो, काम जो काम दो फटाफट करके आता था। एक दिन क्या काम दे भी उसको, अभी सब काम पूरा हो गया तो राजा को कहता नहीं देंगे तो मैं तुमको ही खा जाऊंगा। तभी राजा बेचारा डर गया, मुझे ही खा जाएगा, अभी क्या काम दू, ऐसा कौन सा काम दू जो इसका काम पूरा ही ना हो, क्योंकि जो भी काम देता हूँ वो फटाफट पूरा करके आ जाता है। और काम दो। तब बताते ना बाबा की सीढ़ी बना के दी, लो ये सीढ़ी चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। तो राजा भी बच गया और उसको भी काम मिल गया। तो बाबा कहते हैं मन भी ऐसे ही है, चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। तो चाहे आप इसको सीढ़ी का रूप दो, चाहे स्वदर्शन चक्र का रूप दो, बात एक ही है। जिसको बाबा कहते गोला मुरली में आता चक्र या सीढ़ी, तो ये मन के लिए काम है। और स्वदर्शन चक्र चलाया तो विकारों के गले कट जाएंगे, सीढ़ी पर चढ़े और उतरे तो माया से बच जाएंगे। अर्थात मन को काम देना है, मुख्य बात यही है। तो मन को मारो नहीं, लेकिन मन को सुधारो। मन को दमन मत करो, लेकिन मन को सुमन करो। सुमन करेंगे तो अमन होगा, ऐसे कहते हैं। पर अमन यानी मन ही ना हो ऐसी बात नहीं है। मन है, परंतु मन में शांति की शक्ति हो। तो शांति की शक्ति कैसे आएगी? जब मन को शांति के चिंतन देंगे। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। और आजकल एक नया स्लोगन निकला है, आप जैसा सोचते हैं, जो सोचते हैं उसी बात को आकर्षित करते हैं, पावर ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। आप अगर वही बात सोचेंगे, जो सोचेंगे वो चीज वो बात आपके पास खींच कर आएगी, अपने आप आ जाएगी। क्योंकि आपके सोच में वो बात थी तो पहुंच जाएगी, वो अट्रैक्ट किया ना उसको। जैसे कई बार गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइवर बहुत जरा फास्ट चलाता है तो मालिक बैठा होगा बाजू में कहेगा भाई इतना फास्ट मत चलाओ, एक्सीडेंट कर दोगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, फास्ट मत चलाओ। तो कई बार ड्राइवर कहेगा कि साहब शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। क्यों शुभ शुभ बोलो? एक्सीडेंट न कर दो, एक्सीडेंट न हो जाए। मन एक्सीडेंट को हमने आह्वान किया, नहीं तो कौन सोचेगा एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट का आह्वान किया, तो आह्वान किया तो क्या होगा? आ जाएगा, नहीं तो क्यों आएगा। जैसे एक गुरु की बात कहानी सुनाते ना कि एक उनके पास शिष्य गया, कहता है गुरुजी बहुत मन चंचल है मेरा, बहुत चंचल है, मैं इस मन को शांत कैसे करूं? बिल्कुल बंदर की तरह वो छलांग ही मारता रहता है, कूदता ही रहता है, जैसे बंदर कूदता है ना, कभी ये सोच फिर वो सोच, मन बंदर की तरह है। तो गुरु ने उसको क्या कहा, देखो मैं तुमको मंत्र दूंगा, लेकिन जब ये मंत्र का जाप करो तो बंदर याद नहीं आए, नहीं तो बंदर की तरह छलांग मारेगा मन, तो बंदर याद नहीं आए। तो जैसे मंत्र जाप करने बैठा, बंदर को याद नहीं करना, बंदर को याद नहीं करना, तो क्या हुआ? याद नहीं करना, याद नहीं करना है तो बंदर ही पहले आएगा, कि बंदर पहले शब्द मन में सोच लिया तो चाहे याद नहीं करना ये बाद का शब्द है, तो पहले बंदर शब्द कहते ही क्या हुआ, बंदर मन में आ गया। प्रैक्टिकल में ना भी आया हो पर मन में आया तो वो बंदर को आकर्षित तो करेगा ना, आ जाएगा बंदर भी। तो इसीलिए जो चीज आप नहीं चाहते हो तो उसके बारे में सोचो भी नहीं, पर सोच तो चलेगा ही जरूर, पर जो नहीं करना है, जो नहीं कहना है, उसके बारे में सोचो नहीं तो न कहोगे न करोगे, क्योंकि जो सोचोगे वही मुख से निकलेगा, वही कर्म में आएगा। कई लोग है ना बहुत चतुर होते हैं, वो कहते हैं ना जो मैं अंदर में सोचता हूँ ना वो कभी मुख से बोलता नहीं हूँ, और जो मैं मुख से बोलता हूँ वो कभी करता नहीं हूँ। अब वो व्यक्ति कैसा होगा, होगा ऐसा कोई व्यक्ति कि सोचता जो है वो कभी बोलता नहीं है, और जो बोलता वो कभी करता नहीं है, और जो कभी करता है वो कभी सोचता नहीं है, ऐसे भी होता है क्या? होता है ऐसे, होता है या नहीं होता है पता नहीं। कई तो कहते पता ही नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन है ना। और सरल क्या है, जो सोचते हैं वही मुख से बोलते हैं, वही करते हैं, और जो कर रहे हैं वही मन में, वो इसी की सोच है। तो टेंशन तो ऐसे ही पैदा होता है ना, क्योंकि सोचते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं, फिर क्या हमने सोचा क्या बोला वो भी कुछ याद नहीं, करते कुछ और है तो क्या कर रहे हैं वही पता नहीं, क्योंकि वो इम्प्रेशन तो है नहीं मन में, तो कुछ और सोच चल रहे हैं। कई बार आप कुछ काम कर लिया फिर दूसरी जगह गए, पता नहीं ये मैंने काम किया या नहीं किया, पता नहीं किया या नहीं किया, वो चीज मैंने वहां जगह पर रखी या नहीं रखी, क्योंकि रखते समय वो सोच नहीं रहे हैं कि मैं ये चीज यहाँ रख रही हूँ, सोच कुछ और रहे हैं, और रख के चले आए फिर याद आया कि पता नहीं मैंने उठाया या नहीं, पता नहीं मैंने वहां रखा या नहीं। तो करते समय भी वही सोच हो तो याद ठहर जाती है कि हाँ यही है। तो जो कर रहे हो वही सोचना है, वही बोलना है, नहीं तो अपने आप को ही तनाव पैदा करेंगे। तनाव की परिभाषा हम क्या देते हैं कि मन कुछ और सोचता है, बुद्धि कुछ और दिशा दे रही है, मन ये कहता है बुद्धि वो कहती है, दोनों की आवाज अंदर में टकरा रही है, क्योंकि दोनों ही आत्मा की शक्ति है, तो मन की आवाज और बुद्धि की आवाज दोनों टकरा रही है, तो बेचारा वो आत्मा समझ नहीं पाती आखिर करना क्या है। तो इसको ही टेंशन कहते हैं, तनाव कहते हैं। परंतु योग हमें क्या सिखाता है, मन में जो सोचो वही मुख से बोलो, और वही आपके कर्म में हो, वही आपकी स्थिति में हो, वही वाइब्रेशंस, तो वही आपकी भावनाएं हो, तो जब समान होगा तो अंतर में स्पष्ट है, साफ है, शुद्ध है, ट्रांसपेरेंट है, ऐसे नहीं अंदर एक बाहर दूसरा, और वही व्यक्ति पसंद किए जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता बहुत है पर वो करता कुछ नहीं है, तो लोग क्या कहेंगे, तो खाली बोलता है, छोड़ो इसको छोड़ो, ये करेगा नहीं कुछ, खाली बोलता है। कई बार ना हम बहुत वायदे करते हैं, पर वायदे किस लिए करते हैं, निभाने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए, तो तोड़ देते हैं वो वायदे, तो समझ जाते हैं लोग भी ये खाली बोलता है, बातों नहीं बहुत है, करने वाला कुछ नहीं, तो लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। और कई ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं किसी को बताते नहीं है, तो भी लोग डरेंगे, पता नहीं क्या कर देगा, पता ही नहीं ये तो क्या कर रहा है, कुछ नहीं मालूम ही नहीं पड़ता, तो भी लोग शक की निगाहों से देखेंगे, क्योंकि सब कुछ पता नहीं क्या कर रहा है, तो जरूर शक करेंगे ना लोग। तो जो कर रहा है वो कह नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा है, तो कहा जाता है इंग्लिश में स्टिल वाटर्स रन डीप, जो बहुत गहरे होते हैं ना वो, माना पानी ठहरा हुआ होता है, तो वो कितना गहरा है वो पता नहीं चलता है, ठहरा हुआ है, कचरा भी भरा हुआ है पर कितना गहरा है पता नहीं, और अगर वो बहुत गहरा नहीं है, शैलो है और बहता जा रहा है, तो उसके नीचे क्या है वो सब पता चलता है। तो इसीलिए जो कुछ नहीं बोलते वो क्या कर देगा कभी भी कुछ पता नहीं चलता है, तो वो भी खतरनाक होते हैं। और जो कहते कुछ है और करते कुछ और हैं, तो वो और ज्यादा खतरनाक है। हाँ, कहता तो है पर पता नहीं क्या कर देगा। कई बार बहुत कुछ बातें हैं इसके बारे में, ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन मन हमारा इतना सरल हो और वो सरल मन, स्वच्छ मन, श्रेष्ठ मन किस आधार पर होगा बाबा? इसलिए बार बार हमें यही कहते हैं कि देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो, आत्मिक स्थिति हो। तो ये देही अभिमानी की स्थिति माना ही मन जीतना, माया को जीतना माना मन को अपना मित्र बनाना, क्योंकि माया शुरू ही मन से पहले होती है। और अगर कोई होशियारी दिखाता भी है कि मैं सोचता तो कुछ और हूँ, कहता तो कुछ और हूँ, करता कुछ और हूँ, अपने आप को ही धोखा देता है, अपने आप को ही धोखा देता है, दूसरे को दे न दे, क्योंकि दूसरे तो विश्वास करेंगे ही नहीं उस पर खुद को ही धोखा देगा। कैसे? जो अंदर में सोचता बहुत है ना, और चलाकी से कहता कुछ और है, अंदर में सोचता है इसको मैं मार डालूं, और बाहर से कहता है आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे हो, तो अंदर एक और बाहर दूसरा। परंतु एक दिन जो अंदर में सोच है ना, वो मुख से निकल ही आता है, अनजाने में भी निकल आता है। और अगर अनजाने में भी निकल आया और उसको पता ही नहीं चला उसने ऐसे कहा, माना अंदर में वो बहुत गहरा है और एक दिन बाहर आ गया और पकड़ा गया। इसीलिए कोई कितनी भी चालाकी करे, उसकी चालाकी बहुत समय नहीं चल सकती है, पता चल जाता है। इसलिए सबसे सहज क्या है? अंदर बाहर एक, अंदर बाहर साफ स्वच्छ। अगर कोई कमजोरी है भी तो बता दो है। हम तो कई बार देखते थे, कई हमारे वरिष्ठ भी मैं तो समझता हूँ ये मेरी कमजोरी है, कह दो ना, इसमें क्या है, नहीं कर सकते हो कह दो। कई लोग ऐसे होते हैं कि कर नहीं सकते, हाँ करूंगा करूंगा, बड़ा अभिमान दिखाते, और देखो तो कर तो सकता नहीं, फिर कर दिया उल्टा। हमने तो ऐसे समझा, अरे भाई समझा ऐसे कैसे, पूछते ना अगर नहीं समझ में आया तो, हाँ हाँ मुझे आता है मुझे आता है, समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि समझ लिया हाँ मैं तो बहुत होशियार हूँ। तो बाबा कहते ये भी अपने आप को धोखा देना है। और कई फिर है समझते सब कुछ है लेकिन करना नहीं चाहते, और कह देंगे नहीं 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 मैं तो नहीं कर सकता, सीधा बोल दिया। बाबा कहते वो भी नहीं। तो क्या सोचना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए? बाबा हमेशा कहते हैं पहले मन से ऊपर बुद्धि है, तो बुद्धि द्वारा सोचो, पहले समझो। सोच तो चलेगा पर कर्म से पहले समझो। इसलिए क्या कहा जाता है, सोच समझ कर कर्म करो। अगर सीधा कर्म कर लिया बिना सोचे, दे अभिमान वश, तो वो कर्म उल्टा ही होगा। और फिर बाद में समझ आ गई तो फिर तो बहुत लेट, और फिर सोचेंगे अभी क्या करूं क्योंकि गलत कर लिया। फिर कितना भी समझा पर गलती तो हो ही गई ना, वो रिकॉर्ड में तो आ ही गया, रेड मार्क, फेलियर का मार्क तो लग ही गया। तो इसीलिए मन को अपना मित्र बनाओ, मन आपका दुश्मन नहीं है, उस मन में श्रेष्ठ सोच लाओ। जब बाबा कहते हैं कि व्यर्थ की बात, अभी आपका क्लास हुआ, व्यर्थ को कैसे जीते, समर्थ स्थिति कैसे बने, इसलिए मन की बात है, मन और बुद्धि की बात है। तो अगर मन में ये विचार आ रहा है और बुद्धि कहती है ये गलत है हमारी सोच, तो बाबा कहते हैं उसी समय क्या करो, क्या करो, नहीं, ब्रेक पावरफुल हो। मन जीतना माना ब्रेक को पावरफुल बनाना, जो हम सोचना चाहें वही सोचें, और जो नहीं सोचना चाहें वो नहीं सोचें। ये है मन को जीतना, मन को अपने वश करना, मन को अपना सेवक बनाना। अगर हम जो चाहते हैं सोचना, वो तो मन में सोच चली नहीं रही, और जो नहीं चाहते हैं सोच, वही मन में सोच चल रहे। कई बार ऐसे होता है ना, मैं कोई बात नहीं सोचना चाहती हूँ, पर बार बार वही मन में आता है, ये क्यों मेरे मन में ऐसा सोच चलता है, नहीं आना चाहिए, क्यों चल रहा है। अब क्यों भी कहा ना तो भी बैठ जाएगा वो सोच आपके अंदर में, है ना। बाबा कहते कि कोई आपके पास आए और आप उनसे नहीं मिलना चाहते हो, आप उनसे पूछो आप क्यों आए हो, तो क्या करेगा वो, मैं बताता हूँ बताता हूँ, तो बैठ जाएगा अपने आप भी, भले आप नहीं भी बिठाओ, क्योंकि प्रश्न किया आपने, पर आप उसको इग्नोर करो, आप वो आया भी है तो भी आप ध्यान न दो तो आखिर क्या होगा, चला जाएगा। पर आपने पूछ लिया क्यों आए हो तो कारण बताएगा और बैठ जाएगा आपके पास। तो इसीलिए क्यों आए हो ये भी नहीं पूछना, ये संकल्प मेरे मन में क्यों आया, इस समय तो इसको ऐसे नहीं आना चाहिए। ये उसको कहा कि आपको इस समय नहीं आना चाहिए, वो कहेगा साहब अभी टाइम मिला, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। आपने प्रश्न किया ना तो वो अपना उत्तर देगा, पर या तो इग्नोर करो, ध्यान ही न दो, या तो ब्रेक लगाओ। आप टेलीफोन पर कोई बात कर रहा है, बात कर रहा है, अभी आप उसकी बात नहीं सुनना चाहते, अब आप कहेंगे बंद करो बंद, तो नहीं 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 नहीं, वो बोलता जाएगा आप टेलीफोन ही रख दो ना, बात ही खत्म। टेलीफोन रख दिया तो खत्म, बात हो गई। फिर टेलीफोन वो करेगा, आप पता तो है कि उसी वही नंबर है, मोबाइल पर तो पता चल ही जाता है ना, आप उठाओ ही नहीं, मिस कॉल मिस, भले वो फोन करता रहे आप साइलेंस पर रख दो, नहीं उठाना है। वो आपके हाथ में है कि नहीं है हाथ में, कि बात करना ही होगा। तो बाबा कहते हैं कि अगर वो सोच जो भी मन में आता है आप नहीं चाहते हैं, तो एक सेकंड में उसको ब्रेक लगा सको, नहीं। पर वो ब्रेक तब लगे जब बुद्धि इतनी पावरफुल हो, बुद्धि ने समझा ये गलत है। अगर बुद्धि ने नहीं उसको समझा कि गलत है, तो फिर इंद्रियां मालिक बन जाती, नहीं 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 ये तो सोचना ही है ना, ये तो देखना ही है ना, ये तो इस पर तो इसको तो लेना ही है ना, है ना, इंद्रियां मालिक हो गए। इसीलिए कहा गया सोच समझ कर कर्म करो। तो मन जीते जगत जीत माना, मन को हम ब्रेक भी लगा सके, मन में सही विचार भी ला सके, और मन में इतने श्रेष्ठ संकल्प ला सके जो मन हमारा सच्चा मित्र बन करके हमको खुशी भी दिलाए। उन दुखों में उन गमों में हम उसमें फंस न जाए, क्योंकि बुद्धि कहती है कि तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, ये श्वास संकल्प समय शक्ति बहुत अमूल्य है, ये संगम युग का समय दोबारा नहीं आएगा फिर इस कल्प में, जो घड़ी बीत गई वो दोबारा नहीं आएगी वापस, और अभी जो घड़ी बिताई अगले कल्प में फिर ऐसे ही घड़ी बीतेगी। भले कोई कहते पर पिछले कल्प में भी तो ऐसे ही बीता होगा ना, ऐसे ही तभी तो इस कल्प में आया, पर पिछले कल्प को हमें याद नहीं करना है, हमको आगे क्या करना है वो देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो तो आगे के कल्प में ये नहीं आना चाहिए तो अभी भी नहीं करना है। तो पिछले कल्प में जो था वो अभी हो गया, वो तो वो होगा, ये सोच करके बैठना नहीं है या उसको चलाना नहीं है, फिर आगे के कल्प में नहीं करना है। कई लोग ड्रामा की बात पर बहुत मूंझ जाते हैं, बहुत मूंझते हैं। बाबा कहते कल्प पहले जैसे हुआ था वैसे ही होगा, वही होना है, कोई कितना भी पुरुषार्थ करे वही होना है। तो फिर कई इसीलिए वो रुक जाते, पुरुषार्थ करें ही क्यों, हाँ यही बात है। लेकिन बाबा कहते ये ड्रामा की जो पॉइंट है, ड्रामा का ज्ञान है, ये पास्ट के लिए नहीं है, ये इमरजेंसी के लिए है, फ्यूचर के लिए भी नहीं है, इमरजेंसी के लिए, जब और कोई चारा नहीं, जब और कोई रास्ता नहीं उससे बाहर निकलने का, तब इमरजेंसी गेट है वो। बसों में, ट्रेनों में, हवाई जहाजों में इमरजेंसी गेट होते, इमरजेंसी वो खिड़की होती है ना, ट्रेन में भी होती है, वो शीशे को तोड़ना पड़ता है तो बाहर निकलना है। तो इमरजेंसी ऐसे गेट ऐसे नहीं खोलना होता है। विदेशों में तो ये इमरजेंसी गेट तो बहुत कॉमन है, फायर एग्जिट बोलते हैं उसको, वो लिफ्ट जो है या वो सीढ़ी है, वो केवल अगर आग लगे तभी उससे जाना है, नहीं तो नहीं जाना। वो दरवाजा तभी खोलना है जब कुछ ऐसे आपदा आए अंदर, नहीं तो अगर वो खोला दरवाजा तो बहुत बड़ी पेनल्टी है। मैं तो कितने देशों में गई हूँ, मैं एक बार स्वीडन में गई थी, स्वीडन, डेनमार्क, ये यूरोप के नॉर्थ कंट्रीज है, तो स्वीडन में गई थी, वहां तो हर मकान में एक फायर डोर है, फायर एग्जिट डोर, और वो हमेशा बंद रखना है। पर वो दरवाजा ऐसा है जो सीधा ही रोड पर ले आता है, और बाकी मकान तो बड़ा होता है, तो जो एंट्रेंस है वो थोड़ा दूर है गेट से, पर वो जो फायर एग्जिट है या इमरजेंसी एग्जिट है वो बिल्कुल बिल्कुल रोड के ही पास है। अब मुझे तो पता नहीं था कि वो है, तो मैंने सोचा ये तो बड़ा सहज ना, इतना लंबा करके क्यों जाएं, ये दरवाजा तो एकदम रोड पर ले जाएगा। तो मैंने खोल दिया, मैंने खोल दिया, एकदम से वो बहन आ गई, बहन जी ये दरवाजा मत खोलो। मैंने कहा क्यों, ये तो एकदम नजदीक है ना, इतना चलना नहीं पड़ेगा। तो कहा नहीं नहीं नहीं, वो पुलिस देख लेगी, तुरंत पेनल्टी भरनी पड़ेगी, इसलिए ये गेट को खोलना ही नहीं है। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो सारा बताया कि केवल जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, कहीं आग लगे, कुछ लगे, हम तब ये गेट खोल सकते हैं, बाकी नहीं खोल सकते। तो ड्रामा का ज्ञान क्या है, किस लिए? हर वक्त यूज मत करो। कोई थोड़ी सी बीमारी आई, जरा सा कुछ बुखार हुआ, एंटीबायोटिक्स लो, एंटीबायोटिक्स लो, एंटीबायोटिक्स तो फटाफट ठीक कर देगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो एंटीबायोटिक्स जितना लेते जाएंगे कमजोरी आती जाएगी, आपकी अंदर की शक्ति खत्म होती जाएगी। ठीक तो कर लिया तुरंत, फिर अगली बार जब फिर लेंगे तो फिर ज्यादा डोज लेना पड़ेगा, फिर और अगली बार लेंगे और ज्यादा डोज लेना पड़ेगा, आखिर वो एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करेंगे, असर ही नहीं करेंगे, और कमजोरी घर कर लेगी, अंदर की क्षमता खत्म हो गई लड़ने की। तो इसलिए कई बार होम्योपैथी वाले बोलते हैं, होम्योपैथी की थोड़ी सी खुराक खाओ, सही खुराक है तो एकदम लग जाएगी। तो वो कहते हैं कि एक मच्छर है और उस मच्छर को मारने के लिए बॉम्ब गिराते हैं, अब मच्छर तो ऐसे मर जाएगा ना। बुखार थोड़ा सा आया, एंटीबायोटिक्स ले लिया, एलोपैथी दवाई तो ऐसे ही है, लेकिन होम्योपैथी वाले कहते बिल्कुल नहीं लेना एंटीबायोटिक्स, थोड़ा खाना कम कर दो, खाना बंद कर दो, भूखे रहो, तो वो जो अंदर कीटाणु वो मर जाएंगे और आपका बुखार खत्म हो जाएगा। जानवर ऐसे ही करते हैं, वो कौन सी एंटीबायोटिक्स लेते हैं लेकिन हाँ, कई बातों में लेनी पड़ती है, अगर नहीं भी लिया तो वो टाइफाइड का रूप ले लेगा। एक बार ऐसे था, नहीं 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 मुझे एलोपैथी नहीं लेनी, बुखार आए आता जाए, जाए नहीं, नहीं लेना, नहीं लेना, कारण तो कुछ और होता है, एंटीबायोटिक्स उस समय तो मदद कर ही देती है ना, लेकिन लिया ही नहीं, आखिर वो टाइफाइड हो गया। फिर टाइफाइड हो गया तो फिर और ही लेने का देना पड़ गया। हाँ, तो फिर बाद में तो लेना ही पड़ा, इसलिए उसने भी बड़ा समझना पड़ता है क्या लेवे क्या नहीं लेवे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ड्रामा की जो पॉइंट है, ये ड्रामा की पॉइंट बड़ी पेचीदी है, इस पॉइंट को हर वक्त यूज मत करो, क्योंकि हर वक्त यूज करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि ड्रामा का एक दूसरा पहलू भी है, दूसरा पहलू क्या है कि इस ड्रामा के अंदर कर्म का ही फल मिलना है, अगर कर्म नहीं है तो फल भी नहीं है। ये नहीं कि फल अपने आप मिलेगा बिना कर्म किए, अगर कोई फल मिल रहा है बिना कर्म किए तो ये अभी का कर्म नहीं होगा, पिछला होगा। और अभी का कर्म या फल नहीं मिल रहा है ये संचित हो रहा है, क्योंकि तुरंत फल मिले ये जरूरी नहीं है, पर हम कर्म को तो नहीं छोड़े ना, कर्म और फल साथ साथ है। इसीलिए जो कलप पहले किया था वही करूंगा, जो ड्रामा में होगा ये बहुत ही अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा, इसको केवल इमरजेंसी में यूज करो। दवाई में भी हम देखते हैं ना, डॉक्टर लिखते हैं केवल एक ही गोली खानी है, अब एक साथ 10 गोली खा ली वही कि कोई बात नहीं जल्दी ठीक हो जाऊंगा तो क्या होगा, क्या होगा जी? हाँ, भयंकर रूप ले लेगा। भाई नींद नहीं आती है, एक गोली खा लो, चलो नींद की गोली खाइए, कंपोज खा लिया, भाई नींद नहीं आ रही, लेकिन धीरे एक दिन तो कितनी भी खाई नहीं नींद आई, वो 10-20 एक साथ खा ली तो ओम शांति, ओम शांति हो जाएंगे। इसलिए उसका डोज कितना लेना है वो भी समझना होता है। तो ड्रामा बहुत बहुत ही बड़ा डोज है, ये बड़ा डोज माना जैसे ऑपरेशन कोई हर छोटी छोटी बात के लिए थोड़ी किया जाता है, छोटी बात है तो अब भाई दवाई तो लो थोड़ा देखो। ऑपरेशन माना जब और कोई चारा नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं, सब रास्ते बंद हो गए, ऐसे नहीं होगा ठीक, तो उस जड़ को निकालना है ऑपरेशन करके। तो ड्रामा माना ऑपरेशन, चीरफाड़ तो होगा ना ऑपरेशन किया तो, पर वो अपना घाव तो छोड़ के जाएगा। इसीलिए ड्रामा को ऐसे जल्दी जल्दी नहीं साथ कर लो, ज्ञान की पॉइंट्स को साथ में लो, कर्म को महत्व दो, बाबा की याद हो, पर ड्रामा कह के हम अलबेले न बन जाएं। पर हाँ, ड्रामा तब याद करे जब और सब रास्ते बंद हो जाए, कोई बात हो गई, अगर ऐसे नहीं होता तो ये नहीं होता, हाँ बाबा ने मुझे मदद नहीं की इसलिए ऐसे हुआ, फलाना नहीं आया समय पर इसलिए ऐसे हुआ, तो न जाने कितनों को दोष देना शुरू कर देते हैं। फिर कहेंगे क्या करो मेरे भाग्य में ही ऐसा था, और दुखी होके बैठ जाओ। तो जब सब रास्ते बंद हो जाए तो लोग अपने भाग्य को ही कोसते हैं, हम कहते भाग्य को भी नहीं कोसो, वो भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन क्या याद करो उस समय हा? और सब दरवाजे बंद हो जाए उस समय ड्रामा, हाँ बाबा भी नहीं मदद कर रहा है तो क्या सोचो। कई बार बाबा भी कहते हैं कि बच्चे ऐसे कर्म हैं तो बाबा भी क्या करेगा, बाबा की याद में रहो, सेंस की शक्ति आएगी। परंतु ये ड्रामा में ऐसा ही होना है, और अपने मन को शांत करना है। तो मन को मित्र बनाना माना, मन को जीतना माना, ड्रामा के ज्ञान को भी सही रूप में समझना। तो मन आपका मित्र बन करके आपको ड्रामा के ज्ञान से शांति देगा, मन भी शांति देगा। मन सदाई बुरा नहीं है, मन एक बहुत बड़ी शक्ति है, और इतने ऊंचे आप विचार मन में लाओ जो बाबा हमें कहते हैं, बच्चे पांच स्वरूपों को याद करो, बस याद करते ही नशा चढ़ जाए, ये भी तो मन का ही तो काम है। कई कहते हम कैसे सोचे, कैसे ये लाए मन में, कैसे हम उसकी संकल्पना करें, कैसे कैसे मत करो, कहो ये है। बाबा जब कहते हैं परम धाम को याद करो, कई कहते हमने परम धाम तो देखा ही नहीं है, कैसे याद करें, नहीं देखा है परम धाम, देखा है या नहीं देखा है? जो कहते नहीं देखा है हाथ उठाओ। अच्छा देखो, एक दो हाथ उठ रहे, नहीं देखा है। आप आए कहां से इस सृष्टि पर है? वहीं से आए हो ना। कोई बच्चा कहे, अभी वो चार पांच साल का है और मम्मी उसको उसका फोटो दिखा रही है, बेटा ये मकान है ना, गांव में पैदा हुए थे, यहाँ तुम पैदा हुआ था इस मकान में, और फिर तो गए नहीं, वो तो छोड़ दिया, सब बेच दिया जमीन मकान और गांव से शहर में आ गए हैं, पर माँ उसको फोटो दिखाती है, तो बच्चा कहेगा मम्मी मैंने तो देखा ही नहीं। पर सचमुच नहीं देखा क्या? देखा या नहीं देखा? देखा तो होगा ना, वही पैदा हुआ है तो देखा तो होगा ना, लेकिन याद नहीं है। तो कई कहते हैं परम धाम हम क्या कल्पना करें, देखा तो है नहीं, क्योंकि जो देखा नहीं उसकी कल्पना की जाती है। अब जरूरी नहीं कि कल्पना करो, उसका फोटो दिखा सकते हैं। अमेरिका आपने देखा नहीं, पर अगर हम आपको अमेरिका टीवी पर आप देखते हैं तो जैसे देखा ही ना कि नहीं देखा, फोटो में कहीं देखा अमेरिका के सीनरी, तो अमेरिका देखा कि नहीं देखा? हा? देखा ना, फोटो ही देखा मना देखा। तो यहाँ बाबा कहते इन आंखों से तो वैसे ही देख नहीं सकते, लेकिन मन एक ऐसा नेत्र है जिस मन रूपी नेत्र से हम बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो मन को मित्र बनाओ, माना उस मन के नेत्र से देखो, आप आत्मा को भी देख सकते हो, परमात्मा को भी देख सकते हो, सारे चक्र को देख सकते हो, परम धाम को देख सकते हो, अपना भविष्य देख सकते हो, स्वर्ग देख सकते हो। मन को ऐसे यूज करो, आंख के रूप में यूज करो। मन की आंख तो बहुत तेज होती है, इन आंखों से वो तेज है। मन का स्पीड कितना है? आपकी वाणी की स्पीड और मन की स्पीड अंतर है या नहीं है? हम कई बार बताते हैं, लेक्चर में बताते हैं कि देखो सब इस प्रकृति के अंदर सबसे तेज गति जो तत्व है ना, पांच तत्व, उन सभी तत्वों में से, पांच तत्वों में से सबसे तेज गति है प्रकाश की। प्रकाश तत्व माना अग्नि तत्व, वो प्रकाश तत्व की रफ्तार सबसे तेज है। सूरज से प्रकाश की किरण निकलती है, कितना करोड़ों मील दूर है, पर वो प्रकाश जो सूरज से निकलता है वो धरती पर पहुंचने में उसको 8 मिनट लगते हैं विज्ञान के अनुसार। 8 मिनट में वो प्रकाश यात्रा करके धरती तक पहुंचता है, पर मन से अगर आपको सूरज तक पहुंचना है तो कितनी देर में पहुंचेंगे? तो मन की स्पीड कितनी है? 1 सेकंड में पहुंच जाओ सूरज में, इतना तपा हुआ अग्नि का पुंज है वो, बस अंदर जाते ही जो कुछ है सब पिघल क्या जाए, हवा में उड़ जाए, मतलब कुछ भी न जिंदा रहे, कुछ भी न बचे, इतना सब नष्ट हो जाए, क्योंकि वो तो आग ही आग है, आग का ही गोला है। पर संकल्प किया और पहुंच गए और वो अनुभव भी होने लगता है, तो मन की वो शक्ति है कि वो जो संकल्प करो वो अनुभव आपको तुरंत होगा। इसीलिए कई लोग कहते हैं ना कि आप लोग जो मेडिटेशन मेडिटेशन कहते हो, जाओ परम धाम, हम अपने आप को शांत स्वरूप देखो, शिव बाबा के को अपने सामने लाओ और उनको देखो, उनसे शक्ति ले रहे, ये आप तो किसी, आप सबको हिप्नोटाइज कर रहे हो, हिप्नोटाइज। कई लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां क्या करती है, लाल लाइट जलाती है, फिर कुछ न कुछ बोलती है और वो बोल करके वो सबको सम्मोहित कर देती है। अब सम्मोहन क्या है? वास्तव में फर्स्ट स्टेप वही है, सम्मोहन में भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन क्या अंतर है? सम्मोहन का बाबा कई बार मुरली में सुनाते हैं, वो सम्मोहन किया किसी को कि मैं तो भैंस हूं, तो इतना अपने आप को मोटा समझने लगा, अब दरवाजे से गुजरना है और दरवाजा तो छोटा है, दुबला पतला है, लेकिन वो अपने आप को भैंस समझ रहा है, तो मैं दरवाजे से कैसे जाऊं, मैं तो भैंस हूं। ये है सम्मोहन की स्थिति। वो है नहीं, लेकिन वो संकल्प ऐसे कराया जो वो ऐसा अनुभव होने लगा, वो सम्मोहन है। मुझे याद है एक बार मैं कहीं गई थी और मुझे ले गई वहां की बहन जी, ये हिप्नोटिस्ट है, ये हिप्नोटिज्म करता, आप देखना। तो हमने कहा देखेंगे, चलो हम गए। तो उसने जो बोलता गया उसने क्या बोला कि अपने आप को एक झाड़ू समझो। अब झाड़ू जो होता है ना, कैसे वो लकड़ी वाला झाड़ू, तो वो लकड़ी वाला झाड़ू है, वो झाड़ू पकड़ के चल रहे हैं, तो बिल्कुल झाड़ू की तरह ऐसे करने लगे सब, ऐसे करने लगे, करते 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 बिल्कुल जैसे झाड़ू हो गए, और एकदम फिर वो बंद भी किया तो भी ऐसे 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 कर रहे हैं। तो देखो हिप्नोटाइज कर लिया। अब कहते आप भी ऐसे ही करते हो, तो हमने कहा कि हमने अंतर बताया, देखो वो झाड़ू भले अपने आप को समझा उसने, पर झाड़ू बन तो नहीं गया ना, बन गया क्या झाड़ू, वो तो इंसान है। पर यहां पर हम जो सोचते हैं वो केवल अनुभव ही नहीं करते, वो स्वरूप भी बन सकते हैं और वो कायम रह सकता है। अभी जैसे मैंने कहा मैं अंदर में सोच रही हूं मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांति के सागर परमात्मा की संतान हूं, शांति धाम का वासी हूं, ये मन को मैंने सोच दिया बुद्धि के द्वारा और बिल्कुल शांत हो गए। पर ये स्थिति मेरी असली स्थिति है, ये मेरी ओरिजिनल स्थिति है, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। तो वास्तविक स्वरूप तक आने के लिए भी यही तरीका है। जैसे एक बच्चा है, भले कमजोर है, लेकिन माँ उसको ये थोड़ी कहेगी तुम कमजोर है तुम कमजोर है तुम कमजोर है, माँ क्या कहेगी, क्या कहेगी? अगर उसमें शक्ति भरनी है तो हाँ तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, हाँ तुम्हारे में अंदर ही ताकत है, चलो 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 तुम कर सकते हो कर सकते हो। अब वो ताकत कहाँ से आ गई? है उसके अंदर, वो कोई सम्मोहित नहीं किया उनको, है वो सम्मोहन तो टेम्पररी चीज है, वो है नहीं वो, पर सम्मोहित करके थोड़े समय के लिए वो लगा कि हो गए, फिर वापस वैसे के वैसे। पर यहाँ ऐसे नहीं है, यहाँ वो स्थिति अनुभव होती है, परंतु चिंतन तो देना ही पड़े ना। अब भक्ति मार्ग में ये चिंतन कभी नहीं दिया, भक्ति मार्ग में तो क्या चिंतन दिया, मैं तो नीच हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो दुष्ट हूँ, एक न जाने क्या क्या अपने लिए का, नीच पापी और क्या गंदा बंदा, चरणों की धूल मिट्टी मूर्ख निर्बल, बस यही। फिर कहा हे भगवान शक्ति दो, भिखारी बन के भगवान से मांगा। तो इसलिए जो कहावत है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, शांति की भीख शक्ति की भीख, मांगते मांगते और ही शक्तिहीन हो गए कलयुग अंत तक आकर के। और अभी बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान मार्ग क्या है, आप तो हो ही शक्ति स्वरूप, आपको शक्ति मांगनी नहीं है, आप तो हो ही पवित्र स्वरूप, आपके अंदर में है ये शक्ति, तो हम सम्मोहित थोड़ी करें, वो तो है ना आप, परंतु वो सोई हुई है शक्ति, और उस सोई हुई शक्ति को जगाना है। जैसे कोई बलशाली व्यक्ति है, बहुत ताकत वाला है, रेसलर है, मुक्केबाज है, बहुत ताकत वाला है, मसल मैन है, परंतु अगर वो सोया हुआ है तो उसकी शक्ति भी सोई हुई है, सोई है, पर जागेगा तो शक्ति का उसका संचार होगा ना, सोया हुआ है तो शक्ति भी सोई है। तो ये भी आत्मा सोई हुई है अज्ञान की नींद में, ये नहीं सम्मोहन कर रहे हैं, वह तो टेम्पररी चीज है, ये अज्ञान की नींद से जगाना है। जैसे बाबा कहते तुम पवित्र स्वरूप आत्मा हो, तो कोई एक भाई कहता है बहन जी मैं कैसे कहूँ मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा, मैंने तो बहुत पाप किए हैं जीवन में, वो पाप ही मेरी बुद्धि में आ रहे, मैंने ये झूठ बोला, ये चोरी की है, ये किया, ये किया, और मैं को मैं पवित्र स्वरूप हूँ, ये तो अपने आप को धोखा देना है। क्या समझते हैं भाई लोग, धोखा देना है या नहीं हा? जी कई आते हैं कहते हैं बहन जी मैं जे मैं पुरानी बातों को भूल ही नहीं पाता हूँ, भूल ही नहीं पाती हूँ, वही बातें बार बार बुद्धि में आती है और मुझे बहुत दुख होता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं उनको भूल ही नहीं पाती हूँ। अब अपने आप को ही आप दुख दे रहे हो, अपने आप को ही दुखी कर रहे हो, दूसरा तो कोई नहीं दुखी कर रहा आपको, आप खुद ही वो सोच कर दुखी कर रहे हो। अब इसमें ड्रामा को याद करो, ड्रामा जो हुआ अच्छा हुआ, सीख लिया, आगे के लिए शिक्षा ले ली, पर अभी क्यों सोच रहे हो, तो बुरा हो गया ना, ड्रामा हो गया, अभी थोड़ी वापस आएगा। पर अभी ये सोचो मैं शक्ति रूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, ये मन को ये काम दो। पर बहन जी मैंने तो बहुत पाप किया है, मैं कैसे कहूँ? अच्छा मत कहो, अच्छा कैसे बनोगे पवित्र? बनना तो है, तो कैसे करोगे, कैसे कहोगे, मैंने बनोगे कैसे? क्या पवित्रता की भीख मांगोगे भगवान से? वह तो आप हो ही, आपका यही स्वभाव है, लेकिन आप भूल गए हो, तो आपको क्या करना है, उसको याद करना है, या अंदर से लाना है, बाहर से लाने की तो बात ही नहीं है, अंदर से लाना है, वो चिंतन से ही लाना है, इसमें अपने मन को अपना मित्र बनाना है। मन आपका हार चुका है, यही संदर्भ में सोच है, मैं तो कर ही नहीं सकता, कर सकते हो, विल पावर भी आपके पास ही है, कोई दूसरा नहीं देगा आपको, जो कुछ चाहिए आत्मा के लिए वो आपके पास ही है, शरीर को जो चाहिए वो तो बाहर से लेंगे, पानी चाहिए चलो भाई जरा प्यास लगी है पानी देना ना जरा, और विल पावर चाहिए किसे मांगेंगे, कोई कितना भी कान में आपको भरे, लेकिन वो जब तक आपको अंदर से ना आए तब तक वो कितना भी कान में डाले वो कुछ काम नहीं करेगा। अंदर में आपके आना चाहिए, हाँ मुझे करना है, हाँ मेरे अंदर ये शक्ति है, अब वो भी तो मन ही फाइनल करेगा ना, इसीलिए कहा मन के हारे हारे मन के जीते जीत, माना मन को जीतना, माना मन को अपना मित्र बनाना, मित्र बना करके उस मन में श्रेष्ठ विचार लाओ, और अगर मन पुरानी बातें सोच भी रहा है तो ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाना भी जरूरी है, या तो मुड़ जाओ, जैसे बाबा कहते हैं ना भाई पहाड़ आ गया पत्थर आ गया, आप उस पत्थर के ऊपर तो नहीं क्रॉस करोगे, तो हट जाओ, आप पत्थर को तोड़ने भी नहीं बैठोगे, क्यों आया कैसे आया, अगर यही सोच में बैठ गए तो टाइम वेस्ट होता है, चले जाओ मुड़ के चले जाओ, आपको तो आगे देखना है। इसीलिए नहीं, ये ब्रेक लगाना है, और अगर ये ब्रेक नहीं लग रही है और कोई रास्ता नहीं, तब लास्ट रिसोर्ट है ड्रामा। हाँ, ड्रामा कहा माना फुल स्टॉप लग गया, उससे सबक सीख लिया और मन शांत हो गया, तो ड्रामा का ज्ञान मन को शांत भी कर सकता है पर मन को उत्तेजित भी कर सकता है, क्यों क्यों हाँ क्यों, हाँ ड्रामा में होगा तो करेंगे, ड्रामा में होगा तो ड्रामा 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 को हर वक्त मत लाओ मन में, लास्ट है ऑपरेशन अंतिम हथियार है वो, ब्रह्मास्त्र है वो, तो ब्रह्मास्त्र को थोड़ी हर वक्त यूज करना होता है, ये भगवान की अपनी रचना का बहुत बड़ा सीक्रेट भगवान ने हमें दिया है ड्रामा का, और उससे मन शांत हो जाता है। आगे के लिए हमको आगे बढ़ना है, कर्म को महत्व देना है, पुरुषार्थ को महत्व देना है, और कोई मुश्किल भी नहीं है, आपके पास ही है। केवल उसका चिंतन करके, उसको उजागर करके, वो शक्ति का अनुभव करना है। जैसे हनुमान के लिए दिखाते हैं ना, हनुमान के अंदर में बहुत शक्तियां थी, लेकिन एक कमजोरी क्या थी कि जब तक उसको कोई कहे नहीं, उसको याद न दिलाए, तब तक उसको उस शक्ति का आभास नहीं होता था। तो जब सागर के किनारे खड़े हो गए, भाई सागर पार करना है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, थोड़ी जा सकते हैं, तब हनुमान को याद दिला, रहे हनुमान तुम तो उड़ सकते हो, तुम तो लघु भी हो सकते हो, तुम तो बहुत विशाल भी हो सकते हो, ये तुम्हारी अंदर ताकत है। तो जैसे उसको याद दिलाया तो क्या हुआ, आ गई ताकत। तो कहां से आई, कोई बाहर से आई क्या, कहां से आई, पर भूल गया था। तो आत्मा की आत्मा, हर आत्मा एक हनुमान की तरह ही तो है, परंतु वो शक्ति तब अनुभव हो जब हम उसको याद करें, और वो याद भी तो अंदर से ही आएगी, और उसको कोई सम्मोहन कह दे, कोई कुछ भी कह दे। वास्तव में आजकल सम्मोहन जो है ना, उसको मेडिकल साइंस में बहुत यूज कर रहे हैं, पता है, जिसको कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट के जन्म में उनको ले जा करके जो बात उनके अंदर में है ना, वो जाती नहीं, पर क्यों वो है उसको समझ में नहीं आता है, तो पूर्व के जन्मों में ले जा करके वो बात को काट देते हैं, वो सम्मोहन के द्वारा। ये फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मन का प्रॉब्लम है। तो वो जो सम्मोहन करते, वो साइकोलॉजिस्ट बड़े होते, एक हमारे पास आया था, वो अपना अनुभव सुना रहा था कि जन्म से ही, जैसे मैं रोता ही था रोता ही था रोता ही था, मेरी माँ को समझ भी नहीं आया, ये सारा टाइम रो ही रहा है रो ही रहा है रो ही रहा, और जैसे नहीं, जैसे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, सब परीक्षण हो गए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, तो क्यों रो रहा है समझ में नहीं आया। फिर बड़ा हुआ थोड़ा तो बताया कि अब बहुत दर्द हो रहा है, तो कई सब टेस्ट किए, कुछ भी नहीं है, डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं है, तो क्या कारण हो सकता है। तो किसी ने कहा ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो इनको कोई साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ, फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, शरीर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ले गए, तो उसने उनको राय दी कि आप अपने इसका पूर्व जन्म में इनको ले जाइए। तो वो हिप्नोटिक फील्ड में भी है कुछ ऐसे माहिर, वो ऐसे सम्मोहन करते 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 पूर्व जन्म में ले जाते हैं, और पूर्व जन्म में इसको ले गए, और जैसे ले गए तो पता चला कि ये पूर्व जन्म में एक सिपाही था, सिपाही ना, सोल्जर होते ना, तो युद्ध के मैदान में वो दुश्मन से अपना युद्ध कर रहा था, तो उसको गोली लगी, और गोली जो लगी ना वो उसके पेट को लगी, और वहीं वो गिर गया, और पूरा रिसाव खून का होते 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 उस दर्द में वो करा रहा था, और उस दर्द में ही उसने शरीर छोड़ा। अब ये आत्मा में वो संस्कार भर गया, शरीर तो खत्म हो गया, पर वो संस्कार आत्मा में भर गया, और वो अगले जन्म में वो संस्कार जो दर्द का था ना वो साथ ले गया। तो यहाँ जन्म से ही दर्द 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 दर्द, तो जब उसको सम्मोहन में ले गए और उसको वो पता चला कि ऐसे था, और ऐसे उसकी मृत्यु हुई, और उनके वो क्या अपनाते साधन जिससे उसको बंद खत्म कर दिया, डिलीट, जैसे ना कंप्यूटर से डिलीट कर देते हैं, और फिर जब वापस आया दर्द खत्म, दर्द खत्म, कहाँ चला गया, खत्म। ऐसे भी है, हमारे पास समय अफ्रीका में थी, अनुभव सुना हूं आपका, अफ्रीका में थी तो एक माता पिता अपने बच्चे को ले आई, करीब 5 साल का बच्चा होगा। तो 5 साल का बच्चे को लाए, कहा वो तो बहुत धनवान व्यक्ति, आगे पीछे गाड़ियां, बहुत धनी थे। तो कहा ये जो मेरा बच्चा है ना, ये कार में नहीं बैठ रहा है। जैसे ही हम इनको कहते चलो तो कार में बैठ के जाएंगे ना, नहीं मम्मी मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, हर वक्त कार देखे मर जाऊंगा। वो डरे डरे डरे, अरे नहीं मरोगे क्यों, हम भी तो बैठ रहे ना, क्यों मरोगे, नहीं मर जाऊंगा। फिर आखिर क्या हुआ तो उस बच्चे से पूछा क्यों तुम ऐसे कह रहे हो, तो उसने क्या, फिर वो ना अपना, उसको अपना पूर्व जन्म याद था, पूर्व जन्म की बातें कई बार बताता था। तो माँ बाप समझते थे ये साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है ये क्या, तो कहता था मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा सोना है, मेरा ये है, मेरा जेवर, मतलब पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। अब माँ बाप सोचे कहीं पागल तो नहीं हो गया अभी, क्या छोटा 5 साल का बच्चा ऐसे बोल रहा है। तो मम्मी मुझे वहां ले चलो, मुझे वहां ले चलो, वहां ले चलो, मेरा सोना है वो, मैंने वो मेरे पास है, अभी क्या है, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जन्म में तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो कितने डॉक्टरों को दिखा दिया, कोई इलाज नहीं, कुछ समझ में नहीं आए। तो किसने कहा ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, शायद वो आपको कुछ मदद करेंगे। तो बच्चे को लेकर के आए, तो बच्चे से मैंने पूछा क्या है बेटा, तो सारा बताया, हाँ मेरी पत्नी फलाना फलाना सब बताया। तो मैंने इनके माँ बाप को कहा ये जो कुछ कह रहा है ना, वो स्थान भी बता रहा है, उसका घर भी बता रहा है, फलाने शहर में फलाने जगह, मैंने कहा आप इनको ले जाओ वहां, देखो तो सही ये जो कुछ कह रहा है वो कहाँ ले जा रहा है, आप उनको ले जाओ। तो और बोले कार में नहीं बैठ रहा है तो बस में ले जाओ, बस में बैठता था पर कार में नहीं बैठता था। तो अभी इन्होंने मान लिया और उसको बस में ले गए और फलानी जगह दूसरे शहर का नाम बताया। तो बस में ले गए और जैसे ही वहां पहुंचे तुरंत कह दिया हाँ हाँ बस 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 यही बस उतारो, वो देखो मेरा घर, वो देखो मेरा घर। अब इसको क्या पता छोटा बच्चा वो शहर का नाम क्या है, सब बताया और वो देखो मेरा घर। तो क्या हुआ जो माँ बाप ने बाद में बताया, वो बच्चा जल्दी बस को खड़ा किया और उतर करके माँ बाप कोई भी पूछा नहीं सीधा दौड़ा और सीधा अंदर घुस गया। अब अंदर घुस गया तो और तो कोई था ही नहीं, तो अंदर गया, किचन में एक औरत खाना बना रही थी। तो उसका नाम पुकार कर कहता है सुजाता सुजाता, वो जो तुम्हारे गहने है ना वो उस पेड़ के नीचे मैंने गाड़ के रखे है, आप ले लो, वो आपके गहने है, वो पेड़ के नीचे गाड़ के रखे आप ले लो। बस वो कहा वापस दौड़ के आया, मम्मी 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 मम्मी, दौड़ता दौड़ता आया मम्मी के गोद में, गया मम्मी ले चलो, मम्मी मैं कहाँ आया हूँ, मैं कहाँ आया हूँ, अरे तुम ही तो दौड़ के गए पता ही नहीं, कहाँ गए पता ही नहीं। और वो औरत सुजाता इस बच्चे को कैसे मालूम, उसका नाम वही है, वो दौड़ती दौड़ती आई कि कौन है बच्चा और इसको कैसे मालूम ये कहाँ से आया है। तो उनके सास ससुर भी थे, तो ये इनके इस लड़के के माँ बाप भी बैठ गए, सब बातें निकली। तो क्या कैसे पता चला कि उस औरत का जो पति था वो 5-6 साल पहले उसका कार एक्सीडेंट हुआ था और कार एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हुई थी। अब क्या हुआ कि अब पिछले रात को पास वाले घर में चोरी हुई थी और उनका सारा जेवर वेवर सब लूट लिया था, सब ले गए थे। अब ये डर था कि कहीं अभी इस जबार हमारे घर में ना आए। तो क्या हुआ उसने रात के समय जैसे उठ करके, पत्नी सोई थी, रात को उठ करके उसने क्या किया, वो जो सारे कबर्ड में जेवर थे ना वो सब ले करके पेड़ के नीचे गाड़ दिए, ताकि समझो अगर चोर आते भी है ना तो वो तो पेड़ के नीचे, पर पत्नी को पता नहीं, वो तो सोई थी। अच्छा फिर उसके थोड़ी देर के बाद उसके एक दोस्त का फोन आता है, फोन आया कि मैं 5-6 बजे एयरपोर्ट पहुंच रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ और आप मुझे रिसीव करने आना। अब उसी एक दो घंटे के बाद ही था, तो अभी पत्नी तो सोई है, घर में तो सब सोए हैं, तो वो सवेरे उठा गाड़ी लेकर के एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ, और अचानक वहां दूसरी कोई गाड़ी आ रही थी, इसको थोड़ी नींद थी क्या थी, क्योंकि नींद नहीं की होगी ठीक, तो टकराया और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई, है ना, रोड एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु तो हो गई, पत्नी को कुछ पता ही नहीं, डेथ हो गई, अब खत्म। अब वो संस्कार आत्मा ले गई अगले जन्म के लिए, वो संस्कार लेकर वही संस्कार वो उतना ही, और वो जैसे ही जो पूर्व जन्म की उसकी पत्नी होगी उसको बस नाम से पुकारा, उसके बाद वो डिलीट हो गया, वॉश आउट हो गया, और फिर तो उसको जानता भी नहीं है। अब माँ बाप हैरान, उसके जो थे वो हैरान, ये बच्चा कौन क्या कहा, पर उसकी पत्नी को तो सब पता चल गया। फिर सारे राज खुले, भाई ये पूर्व जन्म में तुम्हारा पति था। आप सोच सकते हो कि क्या, फिर तो पता नहीं बाद की बात, लेकिन कहने का भाव है कि वो आत्मा संस्कार ले आई। अब इसको थोड़ा ज्ञान से जोड़ो, हम आत्माओं में वही संस्कार है, देवता ही संस्कार है, परमधाम के संस्कार है, सब संस्कार आत्मा के अंदर तो निहित है ना, 84 जन्मों का पूरा पाठ भरा हुआ है। अब उसको उजागर करो, रील लिपट गया, अभी वो रील को खोलो खोलो, हाँ, सब निकालो, तो ये सम्मोहन नहीं है, पर ये क्या है, ऑटो सजेशन तो है, क्योंकि अपने आप को ये चिंतन दे करके ही अपने रील को खोल सकते हैं। इसलिए जब बाबा कहते ना 5 स्वरूपों को याद करो, इसका मतलब उसको खोलो, उस रील को याद करो, और जो दुखद बातें वो याद नहीं करो, मैं कैसे भक्ति में गिरता गया विकारी बना वो याद नहीं करो, 5 स्वरूप में क्या याद करो, परमधाम बिंदु, देवता स्वरूप, फिर पूज्य स्वरूप, द्वापर युग में पुजारी स्वरूप याद नहीं करो, फिर कौन सा स्वरूप याद करो, पूज्य स्वरूप, मैं इष्ट देव बन करके मेरी पूजा हो रही है, फिर संगम का ब्राह्मण स्वरूप, फिर फरिश्ता स्वरूप, फिर परमधाम में बिंदु स्वरूप, तो ये सब पॉजिटिव बातें हैं। नेगेटिव बात याद नहीं करो, कि नेगेटिव भी तो बहुत हुआ है ना चक्र में, कि नहीं हुआ है, विकारी तभी तो बने, नेगेटिव कितना हुआ, पर वो बात याद नहीं करो, उसको भूल जाओ। तो क्या लेना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, हमेशा आपके सामने ऑप्शन है, ऐसे बताते हैं। कई लोग कहते हैं बहन जी क्या बताऊं, कितना दुख मेरे जीवन में आया, हम कहते हैं वो दुख जो जीवन में आया वो क्यों याद करते, जो सुख मिला वो क्यों नहीं याद करते, सुख भी तो बहुत मिला ना, ये खाली दुख ही मिला है, सुख नहीं मिला क्या, कहते बहन जी दुख की भेंट में सुख तो बहुत कम था, मैंने कहा कितना भी कम हो उसको याद कर सकते हो कि नहीं, कि दुख ज्यादा आकर्षित करता है, तो जो चीज आकर्षित करेगी, जो सोचेंगे वही आकर्षित करेंगे, और जो आकर्षित करेगी वही फिर अनुभव करेंगे, तो क्या अनुभव करना है हमें, सुखद बातें, तो उसके लिए उसी को आकर्षित करो, उसी के बारे में सोचो, तो मन आपका क्या बन जाएगा, सच्चा मित्र बन जाएगा। तो आत्मा अपना दुश्मन अपना मित्र किस आधार पर है, मन के आधार पर, बाकी आत्मा तो है ही अपने असली स्वरूप में शुद्ध, इसीलिए भक्ति में क्या समझ लेते, आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा को तो लेप छेप लगता ही नहीं, ये मन है, ये मन ही बुरा है, मन ही पापी है, फिर मन को मारो, बाबा कहते हैं मन ही तो मित्र बनता है जिससे आत्मा को अपने शुद्धिकरण का अनुभव होता है। तो देखो सारा बाबा कहते सूत में सूत सब मिक्स हो गया है, इसलिए मनुष्य मूंझ गए हैं और उल्टा ले लेते, खाओ पियो मौज करो, आत्मा को तो कुछ लगता ही नहीं है, सब शरीर को लगता है, फिर गंगा स्नान करो छुट्टी हो गई, लेकिन बाबा कहते नहीं, इसलिए मन को मारो भी नहीं, मन मरेगा नहीं, दुश्मन नहीं है, मारने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन उसको सुधारो, उसको सुमन करो, सुंदर विचार भी आप मन में ला सकते हो, वो है योग, और उसके आधार से वो स्थिति अपनाओ, तो सहज है, मन जीते जगत जीत, आप विश्व को जीत सकते हो इससे, यही तो हम कर रहे हैं। चलो ओम शांति। 125 तो मन में कोई भी अगर नेगेटिव आए नहीं, हाँ कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? नहीं शब्द कहना तो आसान है ना, नहीं। कोई बच्चा कुछ कहता है मम्मी के, नहीं, हाँ तो अपना मन भी तो बच्चा है ना, उसको कहो नहीं।
संग बैठूं, उन्हीं संग खेलूं।